नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। कैथरीन वेस्टब्रुक और जॉन टैलबॉट की पुस्तक एमआरआई इन प्रैक्टिस चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग के भौतिक सिद्धांतों और उनके नैदानिक उपयोग के बीच सेतु बनाने वाली शैक्षणिक संदर्भ पुस्तक है। इसका केंद्र केवल यह बताना नहीं है कि स्कैनर से छवि कैसे ली जाती है, बल्कि यह समझाना है कि चुंबकत्व, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा, ऊतक गुणधर्म और डेटा संसाधन मिलकर उपयोगी निदानात्मक छवि क्यों बनाते हैं। पुस्तक में मूल सिद्धांतों से लेकर इमेज वेटिंग, पल्स सीक्वेंस, स्थानिक एनकोडिंग के स्पेस, उपकरण, आर्टिफैक्ट, प्रोटोकॉल अनुकूलन और सुरक्षा तक व्यापक विषय शामिल है। समीकरणों की व्याख्या, चित्रों और व्यावहारिक स्कैन सुझावों के माध्यम से कठिन एमआरआई भौतिकी को कार्यस्थल की समस्याओं से जोड़ा गया है। यह मुख्यतः रेडियोग्राफरों, एमआरआई टेक्नोलॉजिस्टों, रेडियोलॉजी रेजिडेंटों, रेडियोलॉजिस्टों, चिकित्सा भौतिकविदों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। एआरआरटी एमआरआई रजिस्ट्री परीक्षा की तैयारी में भी इसे प्रमुख अध्ययन मार्गदर्शिका माना जाता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, चुंबकीय अनुनाद के मूल सिद्धांतों को छवि निर्माण से जोड़ना। पुस्तक की आधारभूत शक्ति यह है कि यह एमआरआई को केवल मशीन संचालन की प्रक्रिया नहीं मानती। यह पहले नाभिकीय चुंबकत्व, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र और हाइड्रोजन प्रोटोनों के व्यवहार को समझाती है, फिर दिखाती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स इस संतुलन को किस प्रकार बदलती है। इसके बाद रिलैक्सेशन की अवधारणाएं बताती हैं कि अलग अलग ऊतक अलग संकेत क्यों लौटाते हैं। यही अंतर बाद में छवि के कंट्रास्ट का स्रोत बनता है। इस क्रम का व्यावहारिक महत्व बड़ा है, क्योंकि तकनीक विशेषज्ञ को यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि किसी पैरामीटर में बदलाव से छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि संकेत कमजोर हो, कंट्रास्ट अपर्याप्त हो या स्कैन समय अस्वीकार्य रूप से लंबा हो, तो केवल तैयार प्रोटोकॉल दोहराना पर्याप्त नहीं होता। भौतिकी की समझ से ऑपरेटर संभावित कारणों की पहचान कर सकता है। पुस्तक कठिन अवधारणाओं के लिए उपमाओं, चित्रों और समझाए गए समीकरणों का उपयोग करती है। इसलिए यह गणित को अलग बाधा की तरह रखने के बजाय एमआरआई व्यवहार को मापने और समझने के साधन के रूप में प्रस्तुत करती है। यह दृष्टिकोण पाठक को शब्दावली याद कराने के बजाय कारण और परिणाम की श्रृंखला समझाता है। दूसरा, इमेज वेटिंग और कंट्रास्ट के माध्यम से ऊतक भेद स्पष्ट करना। एमआरआई का नैदानिक मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि सामान्य और असामान्य ऊतकों के बीच अंतर कितनी स्पष्टता से दिखे। पुस्तक इमेज वेटिंग और कंट्रास्ट को इस प्रश्न के केंद्र में रखती है। पुनरावृत्ति समय, इको समय और अन्य अधिग्रहण विकल्पों में परिवर्तन से T1, T2 और प्रोटॉन घनत्व आधारित विशेषताएं कैसे उभरती है, यह विषय इसकी मूल चर्चा का हिस्सा है। यह जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी वेटिंग को स्वभावतः श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। सही चयन जांच के नैदानिक उद्देश्य, लक्षित शरीर भाग और संदिग्ध रोप प्रक्रिया पर निर्भर करता है। पुस्तक का उपयोगी पक्ष यह है कि पैरामीटरों के तकनीकी अर्थ को छवि के दिखने वाले परिणाम से जोड़ा जाता है। पाठक समझता है कि अधिक कंट्रास्ट, अधिक सिग्नल, अधिक स्थानिक विभेदन और कम स्कैन समय प्रायः एक साथ अधिकतम नहीं किए जा सकते। अतः प्रोटोकॉल बनाना समझौते की प्रक्रिया है। यह अध्ययन दृष्टि विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो वेटिंग के नाम तो जानते हैं, पर यह नहीं समझते कि उन्हें चुनने के पीछे भौतिक और नैदानिक तर्क क्या है। इससे छवि गुणवत्ता का मूल्यांकन अधिक व्यवस्थित बनता है। तीसरा, स्पिनिको, ग्रेडियंटिको और तीव्र सीक्वेंसों की कार्यप्रणाली। पुस्तक पल्स सीक्वेंसों को एमआरआई की व्यावहारिक भाषा की तरह प्रस्तुत करती है। स्पिन इको और ग्रेडियंट इको सीक्वेंसों की चर्चा यह स्पष्ट करती है कि संकेत को उत्पन्न करने, पुनः फोकस करने और दर्ज करने के तरीके बदलने पर कंट्रास्ट, गति संवेदनशीलता, स्कैन अवधि और आर्टिफैक्ट कैसे बदलते हैं। स्पिन इको आधारित तरीके अपेक्षाकृत परिचित और मजबूत आधार देते हैं, जबकि ग्रेडियंट इको पद्धतियां तीव्र अधिग्रहण तथा कुछ विशिष्ट कंट्रास्ट संभावनाएं प्रदान करती है, पर वे क्षेत्र असमानताओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है। पुस्तक तीव्र स्पिन इको जैसे विकासों को भी मूल सिद्धांतों से जोड़ती है, जिससे पाठक इन्हें अलग अलग नामों की सूची के रूप में नहीं पढ़ता। सीक्वेंस चयन में समय और छवि सूचना का संबंध विशेष महत्व रखता है। रोगी की असुविधा, सांस रोकने की क्षमता, गति और जांच की तात्कालिकता सभी तकनीकी विकल्पों को प्रभावित करते हैं। इसलिए अध्यायों का उद्देश्य केवल सीक्वेंस पहचानना नहीं, बल्कि उनके लाभ और सीमाओं के आधार पर उचित उपयोग समझना है। कुछ पाठकों ने विषयों के बीच आगे पीछे संदर्भ लेने की आवश्यकता को संगठन की सीमा बताया है। फिर भी विस्तृत विषयों की परस्पर निर्भरता को देखते हुए यह पुस्तक क्रमिक पुनरावृत्ति और संदर्भ आधारित अध्ययन से अधिक लाभ देती है। चौथा, स्थानिक एनकोडिंग और के स्पेस से छवि तक डेटा की यात्रा, एमआरआई में स्कैनर सीधे तैयार तस्वीर नहीं देखता, बल्कि संकेतों का ऐसा डेटा प्राप्त करता है जिसे स्थान संबंधी जानकारी देकर छवि में बदला जाता है। पुस्तक स्थानिक एन्कोडिंग और के स्पेस को समझाकर इस बुनियादी किंतु अक्सर कठिन विचार को व्यवस्थित करती है। ग्रेडियंटों की सहायता से शरीर के अलग स्थानों से आए संकेतों को अलग पहचाना जाता है। आवृत्ति और फेज एन्कोडिंग के सिद्धांत यह बताते हैं कि किसी पिक्सल का स्थान केवल उसकी चमक से नहीं, डेटा अधिग्रहण के नियोजित क्रम से निर्धारित होता है। के स्पेस की समझ विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि इससे पता चलता है कि डेटा के अलग हिस्से छवि के कंट्रास्ट, सूक्ष्म विवरण और आर्टिफैक्ट को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इस आधार पर फील्ड ऑफ व्यू, मैट्रिक्स, स्लाइस चयन और स्थानिक विभेदन जैसे विकल्प अधिक अर्थपूर्ण बनते हैं। पुस्तक इस ज्ञान को प्रोटोकॉल अनुकूलन से जोड़ती है। उदाहरण के लिए, छोटा पिक्सल अधिक विवरण दे सकता है, पर संकेत और समय की कीमत पर। इसी प्रकार अधिग्रहण में गति या अपूर्ण डेटा छवि में विकृति के रूप में दिखाई दे सकता है। यह विषय पाठक को बटन आधारित संचालन से आगे ले जाकर डेटा आधारित तर्क विकसित करने में सहायता करता है। अंत में, उपकरण, आर्टिफैक्ट और सुरक्षा को रोगी केंद्रित अभ्यास में रखना, एमआरआई इन प्रैक्टिस तकनीकी गुणवत्ता को रोगी सुरक्षा से अलग विषय नहीं मानती। पुस्तक में उपकरणों, कॉयलों, चुंबकीय वातावरण, आर्टिफैक्ट और सुरक्षा की चर्चा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्कृष्ट छवि तभी उपयोगी है जब जांच नियंत्रित और सुरक्षित परिस्थितियों में हुई हो। आर्टिफैक्ट पर सामग्री विशेष महत्व रखती है क्योंकि वे रोग की तरह दिख सकते हैं, वास्तविक असामान्यता को छिपा सकते हैं या पुनः स्कैन की आवश्यकता पैदा कर सकते हैं। गति, धातु, फील्ड असमानता और अधिग्रहण से जुड़े प्रभावों की पहचान तकनीक विशेषज्ञ को समस्या के स्रोत तक पहुंचने में मदद करती है। प्रोटोकॉल अनुकूलन इसीलिए केवल समय बचत नहीं है, बल्कि रोगी की स्थिति और जांच के उद्देश्य के अनुसार सर्वोत्तम व्यावहारिक संतुलन बनाना है। सुरक्षा संबंधी भाग स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो फ्रीक्वेंसी और ग्रेडियंट प्रणाली से जुड़े जोखिमों के प्रति सतर्क दृष्टि को समर्थन देता है। एमआरआई कक्ष में प्रत्यारोपण, धातु वस्तुओं और उपयुक्त स्क्रीनिंग का महत्व इसी व्यापक संदर्भ में समझ आता है। पुस्तक का लाभ यह है कि वह सुरक्षा को नियमों की पृथक सूची की तरह नहीं, बल्कि उपकरण ज्ञान, रोगी संचार और जिम्मेदार कार्यप्रवाह का अनिवार्य भाग बनाती है। निष्कर्ष में, एमआरआई इन प्रैक्टिस उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें एमआरआई की भौतिकी को वास्तविक स्कैनिंग निर्णयों से जोड़कर समझना है। इसमें एमआरआई विद्यार्थी, रेडियोग्राफर, टेक्नोलॉजिस्ट, रेजिडेंट रेडियोलॉजिस्ट, चिकित्सा भौतिकविद और सुरक्षा अथवा इमेजिंग कार्यप्रवाह से जुड़े अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल है। RRT MRI रजिस्ट्री की तैयारी करने वालों के लिए इसकी व्यापकता विशेष लाभ देती है, क्योंकि प्रमुख परीक्षा विषयों को अलग अलग तथ्यों के बजाय परस्पर संबंधित सिद्धांतों के रूप में रखा गया है। अनुभवी कर्मी भी इसे संदर्भ पुस्तक की तरह उपयोग कर सकते हैं, विशेषकर जब प्रोटोकॉल, आर्टिफैक्ट, सीक्वेंस चयन या उपकरण व्यवहार के पीछे का कारण पुनः देखना हो। इसकी विशिष्टता सिद्धांत और उपयोग के संतुलन में है। कई संक्षिप्त मार्गदर्शिकाएं त्वरित तथ्य देती है, जबकि अत्यधिक विशिष्ट भौतिकी ग्रंथ नैदानिक कार्यप्रवाह से दूर हो सकते हैं। यह पुस्तक समीकरणों, चित्रों, उपमाओं और स्कैन सुझावों द्वारा बीच का उपयोगी मार्ग बनाती है, फिर भी यह हल्का या अत्यंत त्वरित परिचय नहीं है। तकनीकी घनत्व के कारण पाठक को क्रमिक अध्ययन और पुनरावृत्ति की जरूरत होगी, तथा कुछ विषयों में अध्यायों के बीच संदर्भ लेना पड़ सकता है। यही गहराई इसे दीर्घकालिक संदर्भ के रूप में मूल्यवान बनाती है। पुस्तक का केंद्रीय लाभ यह है कि पाठक छवि को केवल परिणाम नहीं, बल्कि नियंत्रित भौतिक प्रक्रियाओं, डेटा विकल्पों और रोगी केंद्रित सुरक्षा निर्णयों के निष्कर्ष के रूप में पढ़ना सीखता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं कैथरीन वेस्टब्रुक, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।